Thank you. कुछ कहने का अवकाश दिया है और बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। अभी सभापति महोदय भी अभी मिलने के लिए आए, उनके पति भी और हम लोग यहाँ पर एक बार बैठे हैं। उसमें भी मैं सनातन धर्म सभा में बैठ रहा हूँ। हम लोग सभी लोग सब लोग को जानना चाहिए यथार्थ सनातन धर्म किसको कहते हैं। हम लोग कुछ भ्रम में है कि सनातन धर्म क्या है। आज कोई महोदय बोल रहे थे मानव की सेवा ही सबसे बड़ा सनातन धर्म, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। मैंने उनसे कहा बात तो ठीक कहते हैं, तो यही यदि मनुष्यों की सेवा पड़ी है, जब प्राण निकल जाए तो उसकी क्या सेवा करेंगे, उसको जलाएंगे क्यों, उसको घर में रख कर के आदत पूर्वक खिलाइए पिलाइए आराम के साथ में, क्या यही सनातन धर्म है मानुष मनुष्य की सेवा। ये सब हम है, ये सनातन धर्म नहीं है। आजकल विदेशों में यही सब प्रचार हो रहा है, भारत में भी यही होने लगा। हमारा रामकृष्ण मिशन बंगाल का, वो मनुष्यों की सेवा को ही भगवान का सेवा मान, भगवान नहीं है कुछ, इसी की सेवा करो। तो आप लोग इसके भ्रम में न रहे। सनातन क्या है, दो सनातनों के बीच में जो धर्म होता है वो सनातन धर्म है। एक जीवात्मा सनातन है और एक परमात्मा सनातन। इस शरीर की डाल के ऊपर में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। जीवात्मा लाखों है एक एक शरीर के अंदर में एक एक का, और परमात्मा एक होकर के भी करोड़ों रूपों में एक ही होकर के सब शरीर सब व्याप। ओ जीवात्मा तो हम लोग हैं इसके अंदर, परमात्मा कौन है, वही परमात्मा श्री कृष्ण। कृष्ण के प्रति शास्त्रों में कहा गया है एते चांस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है और सब उनके अंश कला है। और अहोभाग्यम अहोभाग्यम कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह मत रखो। मनुष्य भगवान है आजकल ये भी चल रहा है, भगवान को कौन देखा, हम भी जीवंत भगवान को देखा। और दो दिन के बाद में राम नाम सत्य होगा फिर निकलेगी, तब फिर कहा रहेगा वो। इसलिए कृष्ण सनातन पर ब्रह्म है, और भी लाखों श्लोक है प्रमाण। और जीवात्मा भी सनातन है, ममई मानसो जीवलो के जीव भूता सनातन। अब कृष्ण के प्रति हमारा जो धर्म है यही परम धर्म, सब शास्त्रों में ऐसा ही कहा। सवाई पुंसाम परो धर्मो धर्मो भक्ति न दुख ने अहित तुम कब दवरिता जब भक्ति पुंसम। कृष्ण के प्रति जीवात्मा का जो प्रेम है यही परम धर्म है। गॉड इज लव, लव इज गॉड, ये और किसी भी अवतार के लिए नहीं, क्राइस्ट के लिए नहीं, बुद्धदेव के लिए नहीं, नृसिंह भगवान के लिए नहीं, यहाँ तक कि रामचंद्र जी के लिए भी। कोई रामचंद्र जी के सामने कोई उनके रूप पर आसक्त होकर कोई कहे कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता, राम शादी करेंगे कि नहीं उसे, मर्यादा में जकड़े हुए बंधे हुए हैं, नहीं कर सकते। और कृष्ण के पास में कोई भी पहुंच जाए, कोई भी चीज चाहे, कोई भी इच्छा करे, उसको दे दे। नरकासुर ने हजारों 16,000 बड़ी बड़ी सुंदरी राजकुमारियों को, राजाओं की सुंदर स्त्रियों को, कन्याओं को जबरदस्ती उनको हरा करके पकड़ करके ले गया और एक शुभ मुहूर्त देख रहा था उनसे शादी करें। और इतने में कृष्ण को पता लगा नारद जी से, गरुड़ के ऊपर मैं बैठ करके गए और उसे चक्र से मारा और जिमखाना खुलवा दिया। बोले जैसे तुम मेरी आदरणीय हो, जिस राजा की पत्नी हो, जिस पिता की लड़की हो, जिस भाई की बहन हो, मैं वहीं पर तुम लोगों को पहुंचा दूंगा। तुम बतलाओ रथ पर चढ़ा कुछ अभी भेज देता हूँ। तो रोने लगी, अब हमारे भाई लोग हमें नहीं रखते, हमारे पति लोग अपने ही ग्रहण करेंगे। जानते हैं सीता जी, लक्ष्मी जी रावण के यहाँ 10 महीने या कितने लोग क्या कहने लगे, इसलिए सीता जी का फिर प्रत्याग करना, तरह तरह के लोग इसलिए नहीं रखेंगे हमें, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपके घरों में झाड़ू दें, आपकी रानियों की सेवा करें, बर्तन मांगेंगी किंतु आप ही ध्यान, ठीक है। गरुड़ पर बैठा करके सबको ले गए द्वारकापुरी और एक साथ में 16,000 भालों में उनको रानी के जैसा विवाह कौन कर सकता है। नहीं कर सकता, इसलिए कृष्ण से बड़ा त्यागी कोई नहीं है। देखो रामचंद्र जी सीता जी के पैरों पर अपना सिर दे सकते हैं, और कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों के राधा जी के चरणों में शीश नवाते हैं। ये कृष्ण कर सकते हैं, नृसिंह जी भी अपनी लक्ष्मी जी से नहीं कर सकते, राम भी नहीं कर सकते, और कोई अवतार नहीं कर सकता, सामर्थ्य नहीं है। और कृष्ण प्रेम के पुजारी स्वयं पर ब्रह्म होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए भी सब गोपियों के चरणों में शीश नवाते हैं। कितनी बार आप मैंने बतलाया कृष्ण के ऐसे प्रेम पुजारी हैं। कहते हैं कृष्ण न पारे हम निर्वध्य संग, मैं तुम्हारा ये गोपियों ब्रह्मा जैसे आयु पा करके भी तुम्हारा आयु नहीं चुका सकता, इसलिए कृष्ण से बढ़कर के और परतत्व नहीं है। इसलिए कृष्ण के प्रति जीव का क्या कर्तव्य है, वैसा ही प्रेम जैसा गोपियों का है, यही सनातन धर्म है। इससे बढ़कर के सनातन धर्म और कुछ नहीं। इसलिए सनातन धर्म को समझो। हम जो कहते हैं समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, पर वो आ सकता है कि स्वरूप में बाहरी रूप, किंतु यथार्थ सनातन धर्म कृष्ण की सेवा, उनकी संतुष्ट होने से सारा जीव मत प्राणी मात्र सुखी हो जाए, इसलिए सनातन धर्म। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में, सर्वे सुखिना भवन्तु, माने क्या, सभी सुखी हो, सर्वे निरामया संतो, सभी निरोग। हम लोग सुखी नहीं है, इसलिए शास्त्र में कहा गया, भगवान से प्रार्थना किया कि हम लोग सभी सुखी रहे। किंतु सुखी रह सकते हैं कैसे, संसारिक धर्मों के साधन से नहीं हो, वो कैसे होगा, ना अल्पम सुखम, थोड़े भी सुख नहीं, उमा एव सुखम, उमा माने विभु, सब व्यापक सबसे सर्वशक्तिमान, वो सुख स्वरूप है कृष्ण, आनंदमय अभ्यास, आनंदमय है, प्रेम स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, इसलिए उसकी उपासना करने से हम सुखी हो सकते। भक्ति रे मैनं नयति, भक्ति बसो पुरुषः, भक्ति रेव भूयसी, इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति, यही हमारा परम धर्म है, इसके अतिरिक्त और कोई परम धर्म नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। एक समय गौतमी नदी के नैमिषारण्य में 60,000 ऋषि लोग हर वर्ष में जहां तहां से सब लोग पहुंचे, सोच रहे हैं ये कभी काल आएगा, आने वाला है, क्या क्या करें, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, इसके बाद में कली का प्रवेश हो गया, कली माने कलहम लाती, जो बिना बात का झगड़ा लगाता, ये कली है। तो सब लोग चिंता कर रहे हैं, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी बन जाएंगी, पुरुष धर्म विरोधी हो जाएंगे, भारत के तीर्थों का स्वरूप बदल जाएगा, उसमें धर्म का कोई सार नहीं रह जाएगा, जगत में गुरु कम हो गए, जो अधिक गाल बजाएंगे वही गुरु होंगे, स्त्रियां केवल श्रृंगार करेंगी, पुरुष के लिए भी ऐसा ही बतला गया, मुसलमानों के अधिकार हो जाएंगे, हमारे जन्मभूमि काशी मथुरा इत्यादि जैसे, भागवत लोग पढ़ेंगे, रुपये की तरफ दृष्टि देख करके, जो आरती में कितना 1,000 रुपया आया, कहेंगे हम 7 दिन पाठ करेंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया भागवत बेचा जाने लगेगा, संकीर्तन भी अपने घर में ले जाकर के लोग कराएंगे, तो कहेंगे पैसा कुछ चाहिए तब कीर्तन करेंगे, कीर्तन भी बिकने लग जाएगा। इस तरह से सब धर्म का स्वरूप बिगड़ जाएगा, और कलयुग आने पर स्त्रियां अपने बच्चों का मांस भी खाने लग जाएगी, भीषण अवस्था भी आने वाला भी है, ये तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, नाम संकीर्तन का प्रचार करा रहे हैं, और अब सारे विश्व में हरिनाम हो रहा है, इसलिए कली काल थोड़ा सा दूर है, नहीं तब तक न जाने क्या कर देता है, ये तो प्रथम चरण है। अभी 1,32,000 वर्ष में से केवल कितना, 5,000 भीषण आएगा, इसीलिए आप लोग भी सावधान हो जाइए। अभी से शुद्ध गुरु ग्रहण करके आश्रय करके और कृष्ण के प्रति प्रेम करना सीखे तो जीवन सुखी हो जाएगा। तू न पते और मृत्यु जावत, सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है कि तो बुढ़ापा नहीं चलेगा, मृत्यु अनिवार्य है। जन्म होते ही मृत्यु का नंबर है, हमें मरना भी है। देख रहे हैं कि लाखों लोग करोड़ों लोग रोज मर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम नहीं मरे, याद कर लीजिएगा, इसलिए समझ रखो। आज कल परसों में मरना है, आज जब मरेंगे तो क्या होगा, हाथ में क्या लेकर के जाएंगे, जो कमाया जो कुछ, एक पैसा भी जाएगा, एक केस भी क्या जाएगा, याद रखो। हाथ मुट्ठी बंद करके आए और जाएंगे प्रसाद कर, कुछ भी नहीं जाए। तुम्हारे पति भाई बंधु पिता माता पति कोई भी नहीं जाएगा, केवल रक्षा कर सकता है भगवान की भक्ति और उनका नाम। इसलिए बतलाया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम भई तो कलौ नाश्ते नाश्ते नहीं सुखी हो सकते, नहीं सुखी हो सकते, नहीं। एकमात्र हरि नाम का आश्रय करो, इसे याद रखो। भोग तो कहीं भी नहीं जाएगा संसार, पति पत्नी का जो तो कुत्ता कुत्ती को भी मिल जाता है, सुअर को भी गधे को भी हो जाता है, वो जीवन का मूल लक्ष्य नहीं है। वो तो भगवान ने ऐसी माया रच दी है, उसके जाल से निकलना बड़ा कठिन है, समझ बुझ करके भी नहीं समझ पाते, मोह में पड़े हुए। इसलिए मोह को छोड़ करके शरीर के निर्वाह के लिए यूज करना है करो। रुपया जोड़ते 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 ऐसा जोड़ते चले जाओगे कि मृत्यु तक, बस मृत्यु आ जाएगी और रुपये की चिंता करते करते सांप बन करके आएगा, उसकी रक्षा करने के। इसलिए प्रेम धर्म बहुत सहज है। गोपियों ने कैसे कृष्ण के लिए प्रेम किया, अभी उसी को अनुसरण करके चिंता कर, उसी प्रेम को अपना जीवन का लक्ष्य मान। जिसके जीवन का कुछ लक्ष्य ही नहीं है वो जानवर। कैसा जानवर? कलकत्ते में बूचड़खाना है, बूचड़खाना जानते हो, कसाई का घर,
बड़ी
खुशी की बात। तो उस पर वहां पर बहुत से जानवर खड़े कर देते हैं, नंबर बाई नंबर उनको कटता है, एक एक टोली में एक एक सौ जानवरों को भेजते हैं और एक साथ खत्म करते हैं। बड़ा भयावह दृश्य होता है। वो क्या कर देते हैं, जब जो खड़े रहते हैं उनका जाने का पारी है, वह उनके सामने हरी हरी कुछ घास चारा फेंक देते हैं और वे लोग उसी को लेकर के लड़ते हैं परस्पर, हम लेंगे तो हम लेंगे। ऐसे हमारी दशा है, अभी एक मिनट के अंदर में जाना है और कटना है, हमारी भी दशा है। इसलिए तुरंत जते मृत्यु के पहले ही जीवन का लक्ष्य बना लो कि हमको कृष्ण से प्रेम करना है। और गोपियों जैसा, और फिर आरंभ करो कहां से, सबसे पहले संतों, शुद्ध संतों जो भगवान का सेवा करते, साधु संग, और फिर गुरुकरण, गुरु भी वैसा होना चाहिए, सब तत्वों को जानने वाले हों, हमारी सारी शंकाओं को दूर करने वाले हों, भगवान में उनका प्रेम हो, नाम संकीर्तन में उनकी रुचि हो और संसार से विरक्त हो। ऐसा महापुरुष मिले तो उसे गुरु बनाओ, जो हमारी सारी शंकाओं को दूर करके के आत्म तत्व के संबंध में, कृष्ण तत्व के संबंध में, प्रेम के तत्व के संबंध में कुछ बदला सके। बस इतना यदि हुआ साधु संघ और गुरु पदार्थ है, तब तो रेल लाइन पर चली। और जितना उसका प्रैक्टिस करोगे उतनी तेजी से चलेगी, नहीं तो धीरे 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 धक 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 धक, जैसे पहले इंजन चलते थे वैसे बैलगाड़ी पर भी सब चलेंगे तो उसी तरह। आज से ही मांस, मदिरा, मछली, शराब, धूम्रपान, ये सब का त्याग कर यही सनातन धर्म। इसीलिए व्यास जी वेदों का विभाग किया, वैसे वो भगवान के अवतार है, नहीं तो इस संभव पर नहीं था। ब्रह्मसूत्र की रचना की आप लोग समझेंगे नहीं जो क्या है। अच्छा थोड़ा सा कीर्तन कर दो तो भाई। बैठो बैठो जल्दी, और ये पांच मिनट बाद में बात। भगवान के अवतार थे, उन्होंने वेदों का भी भाग और एक एक पार्ट को चार भागों में अपने शिष्य बनाए, और फिर उपनिषदों का सार लेकर के ब्रह्मसूत्र बनाए। बहुत कठिन ग्रंथ था, उसको पढ़ने के लिए उपनयन दिया जाता था। जो विद्या भगवान के निकट ले जाती है उसको उपनयन विद्या, जिसको ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं जिसको। तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र बनाया, किंतु भाषा कठिन, गंभीर विचार नहीं लोग समझे। फिर उसकी व्याख्या के लिए पुराण बनाए, 54 पुराण। महाभारत की रचना की, जिसमें स्त्री शूद्र सबका अधिकार है, सब कुछ करके भी गंगा भगवती के तट पर बैठे हुए थे उदास, सोच रहे थे हमने क्या किया क्या नहीं किया, किंतु हमारे चित्त में प्रसन्नता नहीं है, मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं है, मालूम होता है कुछ कमी रह गई। सोच करके स्वयं विचार नहीं कर पाए, हमको जो कुछ करना है कर लिया, किंतु फिर क्या कमी रह गई, ये चित्त प्रसन्न नहीं है। इतने में उनके गुरु नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा तुमने वेदों का भी पाठ किया और सब कुछ किया, किंतु तुम्हारा मन खिन्न क्यों है? गुरु जी यही तो नहीं किया, यही मैं चिंता कर रहा था। आप सर्वांतर्यामी हैं, आप बतला सकते हैं कि मैंने क्या गलती की। वेद शास्त्र धर्म शास्त्र इत्यादि, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी मैंने परिभाषा, यज्ञ इत्यादि सबका संपन्न कराने के लिए विधियां, कभी चित्त खिन्न है? हाँ, मैं जानता हूं शिष्य जो भी हो अपनी कमी नहीं जानता। नारद जी ने बताया तुमने इतने ग्रंथ लिखे हैं,
वेद क्या है? ज्ञान है। किंतु यज्ञ की इतनी तो अधिकता है, पशु यज्ञ, गोमय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ इत्यादि, उसे पशुओं की हिंसा इत्यादि की बात, क्या इसी से भगवान प्रसन्न होंगे? तुम्हारी आत्मा, लोग कितने कितने यज्ञ करते थे, पशुओं की बलि देते थे, तो कोई लोग इंद्र पद भी पाते थे या स्वर्ग लोक में जाते थे। तो ये पशुओं की हिंसा करना धर्म है? दूसरी बात, तुमने ये गलत की, भगवान कौन है? तुमने ठीक से बतलाया नहीं। क्या तुमने कहा है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, समस्त अवतारों के आदि है? कहा है तुमने कहीं गणेश को, कभी शंकर को, कभी दुर्गा को, महाकाली को, कभी सूर्य को, कभी शंकर को? विभिन्न शास्त्रों में, पुराणों में तुमने उनकी प्रधान कर, कलयुग का मनुष्य और समय का मनुष्य निर्णय नहीं कर सकता कि भगवान कौन है। तुम लिखो कृष्णस्तु भगवान, लिखो, अनुभव करो, और इन यज्ञों से कुछ नहीं होगा। त्रैत्रयी पुण्यमयी, इसका द्वारा स्वर्गलोक में जाएंगे, लौट आए, पितृलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक तक जाएंगे, फिर वहां से लौटाना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग उस धर्म का आचरण करो जिसे अपनी जगत में नहीं आना पड़े और जीवन सुखमय शांतिमय हो जाए। अरे गुरु जी, तो मैं तो ये सब नहीं जानता, क्या तुमने लिखा? ये परब्रह्म साक्षात कृष्ण गोपियों को सीधे चरण में अपना सिर झुकाते हैं, लिखा क्या? लिखा कि यशोदा मैया प्रेम से उस परब्रह्म को बांध देती है और वह रोते हैं, लिखा नहीं? तो फिर क्या लिखा? तो कैसे मैं जानूं? तो हमारी कृपा से तुम भक्ति योग का अनुशीलन करो, भक्ति योग के द्वारा चित्त को स्थिर करके योग समाधि ग्रहण करो और उसमें तुम कृष्ण को, उनकी सब शक्तियों को, सब लीलाओं को हाथ में औला रखने की भांति तुम देख सकें और फिर इसी को टूटी लिखना। जीव भगवान का अंश होने पर भी, चेतन होने पर भी माया के वशीभूत है, यह अद्भुत घटना। चेतन हम हैं और माया जड़ है, वो कैसे जीव को बांध सकती है? ये भी विडंबना है। जैसा भाई सूर्यमाणायाम कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उपपद्यते पुंसं शोक मोह भया, ऐसी कथाओं को तुम लिखो। यशोदा मैया ने ओखल में कृष्ण को बांध दिया, गोपियों के चरणों में कृष्ण शीश नवा रहे हैं, उनकी किन करियों के चरणों में नवा रहे हैं, तो फिर वो राधिका जी की बात किया। ये सब लिखो, भ्रमर गीत लिखो, गोपी गीत लिखो,
लड़के आए हैं। वैष्णवेभ्यो नमो नमो महामृगन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय तवै वास्ते तवै वास्ते महामात्रराविना इति विद्यनगरे तन्ने नाम चरणे
वैष्णवैष्णवीगण सनातन धर्म के संबंध में कुछ संक्षेप में बताया था और ये बताया कृष्ण के प्रति ब्रजवासी जैसा प्रेम भी सनातन धर्म है, नित्य धर्म है, भागवत धर्म है, उसी को प्रश्न होता है। बस एक ही ये धर्म है जिसको जिसे भगवान को पाया जा सकता है, कृष्ण को पाया जा सकता है, दूसरा कोई भी पथ नहीं। आश्रय जहाँ पर मैं रहता हूँ एक छोटी सी बुकले की पुस्तक छोटी सी तो मैंने उठा दिया, देखा लिखा है गीता का सार। गीता का सार उन्होंने लिखा, भगवान निर्गुण है, अव्यक्त है, अनादि है, अरूप है और जब हम लोग उसके साकार रूप को जो माया के द्वारा है बना हुआ साकार रूप को अर्थात कृष्ण को राम को जब हम आराधना करते हैं तो उसे मुक्ति नहीं मिलती, उसे तो स्वर्ग और दूसरी चीजें मिलती हैं। निराकार ब्रह्मा तो हम तत्त्वमसि ये सब ध्यान लगा करके जब देखेंगे और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। जगत में गुरु कम है हमारे जैसे, लिख रहा है हमारे जैसे गुरु लोग जगत में कम है जो कि साहस पूर्वक इन बातों को कर सके। तो सदगुरु के बिना मुक्ति मोक्ष नहीं मिली। मैंने कहा ये बेवकूफ नंबर एक, यदि जगत में कोई बेवकूफ है तो इससे पढ़कर के कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। हम तो शास्त्रों का वेद का उपनिषद को पढ़े हैं, वेदांत पढ़े हैं, गीता भागवत का पढ़े हैं, उसका सार बदला रहे हैं। मैंने देखा जैसे कभी भी उसने गीता का वो भी नहीं जाना और की तो बात कर। आप लोग आप लोगों को अपनाने के लिए बता रहा हूँ सब्जेक्ट लाए, मैं तुम्हें तो प्रेम की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अरे पीछे पहले इतना तो समझो, ये अरूप एक शब्द है और एक रूप शब्द है। रूप से अरूप बना है ना अरूप से रूप बना है? मौलिक शब्द क्या है समझो, रूप नहीं आता तो अरूप शब्द बनता